दिव्य मूंछ पुराण स्तोत्र व्यंग्यात्मक अध्यात्म के आलोक में लेखक प्रेमयोगी वज्र पुस्तिका परिचय। प्रिय पाठकों, आध्यात्मिक व्यंग्य कोई नई चीज नहीं है। वेद पुराणों और अन्य सनातन आधारित शास्त्रों में बहुत से व्यंग्यात्मक श्लोक आदि हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान से भरे होने के बावजूद उच्च कोटि का मनोरंजन भी बखूबी प्रदान करते हैं। इसी तरह हमारी प्राचीन नाट्य शैली करियाला में अध्यात्म पर बहुत से व्यंग्यात्मक स्वांग होते थे। आज भी करियाला प्रचलित है, विशेषकर पहाड़ी जनजातियों में। करियाला में कोई नौटंकी बाज ऋषि के व्यंग्यात्मक भेष में आता था तो कोई गुरु चेले के। दर्शक हंसते हंसते अपना पेट पकड़ लेते थे। हमने बचपन में बहुत से करियाला देखे हैं और घर पर करवाए भी हैं। वह पूरी रात भर चलता था, नींद का तो नामो निशान नहीं होता था और हंसते हंसते रात कब कट गई पता ही नहीं चलता था। इससे दो कार्य एक साथ होते थे, लोगों का भरपूर मनोरंजन भी होता था और उनका आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ता था। उसमें लोगों के नाम भी व्यंग्यात्मक होते थे, जैसे कि रिड़कुराम, जाडो देवी आदि। ढोल आदि की थाप पर व्यंग्यात्मक गीतों पर व्यंग्यात्मक शैली में नाचते गाते करियालची चारों ओर मस्ती और ताजगी का आलम बिखेर दिया करते थे। अध्यात्म के ऊपर किए हंसी मजाक का कोई बुरा नहीं माना करता था। ये सनातन धर्म की सहिष्णुता व सार्वभौमिकता का अच्छा उदाहरण है। क्या किसी अन्य धर्म में ऐसा होना संभव है? आजकल तो फिल्में भी एक ही धर्म पर बनाई जा सकती हैं। अन्य धर्मों के बारे में तो ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। मुझे तो इसमें भी कोई बुराई नहीं लगती, अगर ऐसा करने के पीछे सिर्फ ज्ञान और मनोरंजन को बढ़ावा देना हो, न कि नफरत से भरा एजेंडा फैलाना। आज विश्व को ऐसी सांस्कृतिक कला शैलियों से सबक लेकर उनको बढ़ावा देते हुए उन्हें लोकप्रिय बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि तेज गति से बढ़ रही धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता पर लगाम लगाई जा सके और संपूर्ण मानव जाति की रक्षा की जा सके। लेखक परिचय। प्रेमयोगी वज्र का जन्म वर्ष 1975 में भारत के हिमाचल प्रांत की एक सुंदर व कटोरानुमा घाटी में बसे एक छोटे से गांव में हुआ था। वह स्वाभाविक रूप से लेखन, दर्शन, आध्यात्मिकता, योग, लोक व्यवहार, व्यवहारिक विज्ञान और पर्यटन के शौकीन हैं। उन्होंने पशुपालन व पशु चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रशंसनीय काम किया है। वह पोलीहाउस खेती, जैविक खेती, वैज्ञानिक और पानी की बचत युक्त सिंचाई, वर्षाजल संग्रहण, किचन गार्डनिंग, गाय पालन, वर्मी कंपोस्टिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, स्वयं प्रकाशन, संगीत विशेषतः बांसुरी वादन और गायन के भी शौकीन हैं। लगभग इन सभी विषयों पर उन्होंने 10 के करीब पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनका वर्णन Amazon ऑथर सेंट्रल ऑथर पेज प्रेमयोगी वज्र पर उपलब्ध है। इन पुस्तकों का वर्णन उनकी निजी वेबसाइट demystifyingkundalini.com पर भी उपलब्ध है। वे थोड़े समय के लिए एक वैदिक पुजारी भी रहे थे। जब वे लोगों के घरों में अपने वैदिक पुरोहित दादाजी की सहायता से धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे, उन्हें कुछ उन्नत आध्यात्मिक अनुभव, आत्मज्ञान और कुंडलिनी जागरण प्राप्त हुए हैं। उनके अनोखे अनुभवों सहित उनकी आत्मकथा, विशेष रूप से शरीर विज्ञान दर्शन एक आधुनिक कुंडलिनी तंत्र, एक योगी की प्रेम कथा पुस्तक में साझा की गई है। ये पुस्तक उनके जीवन की सबसे प्रमुख और महत्वाकांक्षी पुस्तक है। इस पुस्तक में उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 25 सालों का जीवन दर्शन समाया हुआ है। इस पुस्तक के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। Amazon.in पर एक गुणवत्तापूर्ण व निष्पक्षतापूर्ण समीक्षा में इस पुस्तक को 5 सितारा, सर्वश्रेष्ठ, सबके द्वारा अवश्य पढ़ी जाने योग्य व अति उत्तम, एक्सेलेंट पुस्तक के रूप में समीक्षित किया गया है। गूगल प्ले बुक की समीक्षा में भी इस पुस्तक को 5 स्टार मिले थे। और इस पुस्तक को अच्छा, कूल व गुणवत्तापूर्ण आंका गया था। इस पुस्तक का अंग्रेजी में मिलान लव स्टोरी ऑफ अ योगी व्हाट पतंजलि सेज पुस्तक है। प्रेमयोगी वज्र एक रहस्यमयी व्यक्ति है। वह एक बहुरूपी की तरह है जिसका अपना कोई निर्धारित रूप नहीं होता। उसका वास्तविक रूप उसके मन में लग रही समाधि के आकार प्रकार पर निर्भर करता है। बाहर से वह चाहे कैसा भी दिखे, वह आत्मज्ञानी एनलाइटेंड भी है और उसकी कुंडलिनी भी जागृत हो चुकी है। उसे आत्मज्ञान की अनुभूति प्राकृतिक रूप से प्रेमयोग से हुई थी और कुंडलिनी जागरण की अनुभूति कृत्रिम रूप से कुंडलिनी योग से हुई। प्राकृतिक समाधि के समय उसे सांकेतिक व समवाही तंत्र योग की सहायता मिली, जबकि कृत्रिम समाधि के समय पूर्ण व विषमवाही तंत्र योग की सहायता उसे उसके अपने प्रयासों के अधिकांश योगदान से प्राप्त हुई। अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नांकित स्थान पर देखें https://demystifyingkundalini.com/sarvadhikar-copyright-2023 प्रेमयोगी वज्र। सर्वाधिकार सुरक्षित। वैधानिक टिप्पणी लीगल डिस्क्लेमर। इस अध्यात्म विज्ञान संबंधित पुस्तिका को किसी पूर्व निर्मित साहित्यिक रचना की नकल करके नहीं बनाया गया है। फिर भी यदि यह किसी पूर्व निर्मित रचना से समानता रखती है तो ये केवल मात्र एक संयोग ही है। इसे किसी भी दूसरी धारणाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। पाठक इसको पढ़ने से उत्पन्न ऐसी वैसी परिस्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। हम वकील नहीं हैं। यह पुस्तक व इसमें लिखी गई जानकारियां केवल शिक्षा के प्रचार के नाते प्रदान की गई हैं और आपके न्यायिक सलाहकार द्वारा प्रदत्त किसी भी वैधानिक सलाह का स्थान नहीं ले सकती। छपाई के समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि इस पुस्तक में दी गई सभी जानकारियां सही हों व पाठकों के लिए उपयोगी हों। फिर भी यह बहुत गहरा प्रयास नहीं है, इसलिए इससे किसी प्रकार की हानि होने पर पुस्तक प्रस्तुतिकर्ता अपनी जिम्मेदारी व जवाबदेही को पूर्ण अंतया अस्वीकार करते हैं। पाठकगण अपनी पसंद काम व उनके परिणामों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। उन्हें इससे संबंधित किसी प्रकार का संदेह होने पर अपने न्यायिक सलाहकार से संपर्क करना चाहिए। कुंडलिनी योग में दाढ़ी मूंछ की भूमिका टिल्डर एक कुंडलिनी योग आधारित आध्यात्मिक हास्यात्मक व्यंग्य। मित्रों, जब मेरी कुंडलिनी शक्ति जागरण के लिए मूलाधार से ऊपर उठी, उस समय वहां महिलाओं का समूह सामारोहिक नाच गाना कर रहा था। एक महीने से चले आ रहे तीव्र कुंडलिनी योगाभ्यास से मेरी मध्यम आकार की दाढ़ी उगाई थी। काले बालों के झुंड में उगे कुछ एक सफेद बाल दुनिया की भीड़ में साधु पुरुष जैसे भले जान पड़ते थे, इसलिए कई औरतें मुझे भोलेपन प्यार व अचंभे से निहार रही थीं। वहां पर बड़ी हुई और मैचिंग दाढ़ी वाले कुछ दूसरे लोग भी थे जो मुझे विशेष प्यार आदर और अपनापन दे रहे थे। इससे जाहिर होता है कि दाढ़ी वाले लोग ही असली दाढ़ी की पहचान रखते हैं। हीरे को कौन पहचाने जौहरी, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि यह जोक नहीं सच्चाई है। वैसे भी औरतें बड़ी हुई दाढ़ी से बड़ी प्रभावित और आकर्षित होती हैं। यदि उसके साथ कुंडलिनी योगाभ्यास भी जुड़ा हो और वह भी तांत्रिक प्रकार का, तब तो कहने ही क्या। इससे भी मेरी सुषुप्त कुंडलिनी शक्ति को जागने के लिए पर्याप्त बल मिला। असली दाढ़ी वही होती है जो साधना के प्रभाव से खुद उगाए, जिसे उगा के न करना पड़े और जिसे फैशनेबल बनाने के लिए ज्यादा सौंदर्य प्रसाधन भी न लगाना पड़े। साधना के बल से आंखों में ऐसी चमक पैदा हो जाती है कि बाकी सभी सौंदर्य प्रसाधन उसके आगे फीके पड़ने लगते हैं। दिल में इतना नूर छा जाता है कि चेहरे के नूर पर ध्यान देने का मन ही नहीं करता। बार बार चेहरे के नकली नूर की तरफ ध्यान न जाए। इसके लिए ही तो आदमी की दाढ़ी अपने आप बढ़ने लगती है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई लोग ज्यादा आकर्षक बनने के लिए और खासकर महिलाओं को आकर्षित करने के लिए जानबूझकर दाढ़ी बढ़ाते हैं। साधना का तो वे नाम भी नहीं जानते। कुछ महिलाएं ऊपर ऊपर से तो उनसे आकर्षित होती हैं, पर दिल से उनसे प्रभावित नहीं होती। पर जो महिला गहरी नजर और साधना का शौक रखती हो, वह तो उससे बेहतर क्लीन शेव आदमी को समझती है, क्योंकि क्लीन शेव पुरुष कम से कम धोखा तो नहीं कर रहा होता है, और बेचारा कम से कम नकली नूर से ही तो काम चला रहा होता है। ये जो कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अब तो मेरी शेविंग किट डब्बे में पड़ी बोर हो रही होगी। पहले मैं नाई की दुकान जाया करता था हेयर ट्रिम करवाने, हफ्ते में एक बार। फेस पर कभी जीरो पर ज्यादातर नंबर एक की ट्रिम सेटिंग रखवाता था, मूंछों पर ज्यादातर दो नंबर की सेटिंग रखवाता था। अब तो मैंने अपना ट्रिमर ले लिया है, अपनी मर्जी से दाढ़ी और मूंछों की लंबाई रखता हूँ। एक दिन तो भाई गजब हो गया। हुआ ये कि दाढ़ी तो मैंने दो नंबर की सेटिंग से बना ली थी, ट्रिमर के रेगुलेटर व्हील को तीन नंबर की तरफ घुमाने लगा ताकि मूंछें कुछ बड़ी रखता, पर ये क्या, व्हील उल्टा घूम गया। उस समय शाम गहरा जाने से वहां रोशनी भी कम थी और मैं भी कुछ ज्यादा ही जल्दी में था। अब इस पापी मन का पेट भरे तब ना, वो भी दिन थे जब कई घंटों चलकर नाई की दुकान में पहुंचना पड़ता था। वहां भी रंग बिरंगे जंगलों को अपने मुंह पे सजाए लोगों की लंबी लाइन लगी होती थी। एक दाढ़ी के चक्कर में लगभग पूरा दिन बर्बाद हो जाता था। आजकल देवस्वरूप इस ट्रिमर ने घंटों का काम मिनटों में समेट लिया है, फिर भी चाहिए इस मन को जल्दी। उस जमाने में एक दिन की पूरी कमाई मुंह पर उगे बगीचे की सफाई में लग जाती थी, पर आज ये कंजूस मन बाथरूम मिरर के ऊपर एक अच्छा सा बल्ब लगाने को राजी नहीं। बगीचा इस आस से बोल रहा हूँ कि शायद कुंडलिनी फल इसी में पकता हो, क्योंकि अधिकांश योगी बाबा दाढ़ी वाले ही नजर आते हैं मुझे। तीन की बजाय लेंथ सेटिंग एक हो गई थी, एक चौथाई मूंछ एक झटके में साफ हो गई। ट्रिमर कोई कैंची थोड़े ही है जो संभलने का मौका दे। अधकटी मूंछ रखता तो लोग पता नहीं कौन सी मानसिक बीमारी समझकर मुझे चिढ़ाते, इसलिए मजबूरी में पूरी मूंछ ही साफ करनी पड़ी और दाढ़ी भी। भला हो इस कोरोना फेस मास्क का जिसने अगली दिन मेरी सेहत को बचा लिया, वरना ताना दे देकर लोग जरूर गिरा देते। अब मार्केट में उपलब्ध स्टाइलिश ट्रिमर मशीनों के आगे रेजर ब्लेड वाला युग बीता हुआ युग लगता है। वैसे भी चिकित्सा विज्ञान के अनुसार क्लीन शेव मुंह ज्यादा गंदा होता है। जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ऐसे मुंह का निरीक्षण किया गया तब कीटाणुओं की रंग बिरंगी कॉलोनियों के जंगल उसमें पाए गए। मुंह पर रेजर की खरोंच से शरीर के अंदरूनी सेल्स कीटाणुओं की खुराक बनने के लिए इस तरह से बाहर निकलते रहते हैं, जैसे कि खेत में हल की खुदाई से मिट्टी में दबे कीड़े मकोड़े पक्षियों की खुराक बनने के लिए बाहर निकलते हैं। जब ट्रिमर से साफ किया गया मुंह देखा गया तब बाहर से तो वह जंगल की तरह लग रहा था, पर अंदर से एकदम चकाचक। इसलिए हम आपको भी यही सलाह देते हैं कि एक अच्छा सा ट्रिमर रख लो और कुंडलिनी योगी बन जाओ। मेरे को देखकर बहुत से लोग जटाधारी बन गए, पर यह पता नहीं कि साथ में कुंडलिनी योगी भी बने या फिर मुंह दिखाई भर के ही योगी बने। अगर योगी भी बनते तो मेरी सूरत के साथ सीरत का भी जायजा लेते, पर यह क्या, दूर दूर और छिप छिप के ही उन्होंने मेरी दाढ़ी का नुस्खा चुरा लिया। कुंडलिनी योग गया तेल लेने। हाँ, तेल से याद आया, कईयों का आरोप है कि मूंछें बहुत तेल पीती हैं। इससे मुझे लगा कि यहाँ वस्तुस्थिति स्पष्ट कर देना जरूरी है, ताकि बेचारी बेकसूर मूंछें यूं ही बदनाम न होती रहें। दरअसल वे अपनी मर्जी से या अपने ऐशो आराम के लिए तेल नहीं पीती, बल्कि शनिदेव अपनी दिव्य अचिंत्य शक्ति से उनसे अपने लिए तेल पिलवाते हैं। इसलिए उन दाढ़ी शरणागत लोगों से कुंडलिनी योगा हुआ हो या न हुआ हो, पर उन दाढ़ी में लगे तेल से शनिदेव जरूर प्रसन्न हुए होंगे। दोस्तों, आप तो जानते ही हो कि शनिदेव को काला रंग और सरसों का तेल बहुत प्रिय है। इसलिए यदि शनि का प्रकोप हो तो इधर उधर की जरा भी न सोचें। सरसों के तेल से सींच कर अपने सदाबहार झाड़ को जितना ज्यादा काला, घना और विकराल बनाएंगे, पूज्य शनिदेव उतने ही अधिक फूले नहीं समाएंगे। और आपको ये भी पता होगा कि नाराज शनिदेव जितने बुरे हैं, खुश होने पर उतने ही भले भी हैं। खैर, मैं क्या कह रहा था कि अब चिकने चुपड़े लोगों की जगह जटाधारी लोगों का दिखना आम हो गया है। और तो और, नकल करने की होड़ ऐसी लगी कि छोटे बच्चे भी पापा के रेजर से मुंह खनरोचने लग गए, इस आस से कि शायद उनके भी बाल उगाएं। मैं बड़ी दाढ़ी के फैशन को शुरू करने वाला ऐसा आइकन पीस बन गया कि जब कहीं मुंह की खारिश से परेशान होके मुंह के बाल छोटे करता तो मिलने वाले लोग बोलते कि भाई साहब, आजकल आप कमजोर हो गए हैं। कमजोर नहीं, बहुत कमजोर। कसूर ट्रिमर का और उलाहना सुने सेहत, बालों का भला सेहत से क्या रिश्ता। अब तो वे लोग ही जाने कि बालों से ऐसी कौन सी नाड़ी निकलती है जो सीधी सेहत से जाकर जुड़ती है। और तो और, जो लोग मुझे क्लीन शेव आदमी के रूप में जानते थे, वे भी मेरी दाढ़ी को देखकर बोलते कि मियां, आप कमजोर हो गए हैं। यह अब एक महान और रहस्यमयी खोजबीन का विषय है कि मुंह के बालों में बदलाव से सेहत कैसे गिर जाती है। सेहत भी सिर्फ उन्हीं लोगों की नजर में गिरती है जिन्हें चेहरे में बदलाव नजर आता है। उसको खुद को और दूसरे लोगों को सेहत का गिरना जरा भी नजर नहीं आता। मूंछों की बात कोई नहीं करता। पता नहीं क्यों लोगों को मूंछों की बात करना दुखती रग को छूना लगता है, पर सच्चाई ये है कि जो जिंदगी में कभी न हंसा हो, वह भी मूंछों की बात से बतीसी चमकाते हुए हंसी का फव्वारा छोड़ दे। सीधे तौर पर हेयर ट्रिमर को कोई दोष न दे। सबको पता है कि अगर ट्रिमर या बालों को दोष दिया तो उससे लिंगभेद पैदा हो जाएगा। इससे जाहिर होता है कि आजकल के लोग कितने सयाने हो गए हैं, और साथ में लैंगिक समानता के प्रबल पक्षधर भी। भाई साहब, हम करें भी तो आखिर क्या करें? दाढ़ी मुंडवाएं तो दाढ़ी वाले लोगों की गैंग से बाहर, और अगर दाढ़ी बढ़ाएं तो चिकने लोगों की गैंग से बाहर। आगे कुआं, पीछे खाए। आप मानो न मानो, इस समस्या का हल इलेक्ट्रॉनिक ट्रिमर ही है। इसको लगा के आदमी इधर भी खप जाए और उधर भी। इसको दो नंबर पर मुंह पर घुमा दो तो दाढ़ी वाले भी खुश और चिकने भी खुश। दो नंबर पर ट्रिमर लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। बौद्धों वाला मध्य मार्ग ही सबसे अच्छा है। अगर ज्यादा ही असर चाहिए तो नकली दाढ़ी मूंछ रख लो और चीनी में नमक की तरह हर जगह घुल मिल जाओ। पर मुंह के बालों से तो व्यक्तित्व की पहचान जुड़ी होती है ना। व्यक्तित्व की पहचान गई घास चरने, उसका जरा भी टेंशन नहीं लेने का। अपुन तो बस मजे का बीन बजाना है। वैसे भी जजमेंटल बोले तो मीनमेक ढूंढते रहना आत्मा के लिए नुकसानदायक होता है। बस देखते रहिए, हंसी मजाक में ही आप एक महान आध्यात्मिक गुरु बन जाएंगे। आपके तो दोनों हाथों में लड्डू आ जाएंगे। कहते हैं कि बालों में आत्मा बसती है। आदमी को अपने मुंह के बाल सबसे ज्यादा अजीज होते हैं। मेरा डॉक्टर लोगों से दोस्ताना संबंध रहता है, क्योंकि वे बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। भला उनसे अच्छा बालों को कौन समझ सकता है। वे बताते हैं कि वेंटिलेटर पर जिंदगी की सांसें गिन रहे लोग भी अपनी मूंछों को साफ नहीं करवाते। वे अक्सर वेंटिलेटर के काम में भौतिक बाधा पहुंचाया करती हैं। माया मरे न मन मरे। मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मिटे, कह गए दास कबीर। आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर अपने मुंह के बालों की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी तो अजीज शख्स को नाक का बाल कहकर भी संबोधित किया जाता है। बेशक नाक का बाल है, पर है तो मूंछ का पड़ोसी ही, और वो पड़ोस ही क्या, जहां दिल न मिले। इसी तरह जब चोर की दाढ़ी में तिनका ये बोला जाता है, तो आदमी दाढ़ी पे हाथ घुमाए बिना रह ही नहीं पाता, बेशक उसे चोरी की सजा में फांसी ही क्यों न हो जाए। आपको विश्वास न हो तो आप प्रयोग करके देख लो, भला किस सच्चे दाढ़ीशुदा आदमी को अपनी प्रियतमा दाढ़ी पर एक अदना सा तिनका बर्दाश्त हो सकता है। बालों, विशेषकर मूंछ के बालों के प्रति इस अथाह आकर्षण का ही परिणाम है कि एक बार वन विभाग का छापामार दल बाघ के दांतों और नाखूनों की छानबीन करने लोगों के घर पहुंचा, तो उसे उनकी जगह पर बाघ की मूंछ के बाल छिपाए हुए मिले। और तो और, सिख धर्म में तो केश को धार्मिक महत्व का सर्व प्रमुख चिन्ह माना गया है। वहां तो केश रक्षा के लिए कतार का चलना भी जायज है। आपने महाभारत की कथा तो सुनी ही होगी ना, उसमें पांडव भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर अश्वत्थामा को मृत्युदंड न देकर उसका पूर्ण मुंडन करते हैं, साथ में माथे की मणि भी निकाल लेते हैं। भाई साहब, वह मणि और कुछ नहीं, कुंडलिनी ही तो है, जो बालों के साथ खुद ही चलती बनी, वही माथे पर स्थित आज्ञा चक्र पर निवास करती है। अश्वत्थामा ने इसे अपनी मृत्यु से भी ज्यादा अपमानजनक समझा, और फिर देखा नहीं आपने कि कैसे उसने आगे चलकर बदले की कार्यवाही करते हुए ब्रह्मास्त्र चला दिया था, जिससे उत्तरा के गर्भ में झुलसते हुए परीक्षित को कैसे भगवान श्री कृष्ण ने बाल बाल बचा लिया था। इधर एक मशहूर नेत्री ने विदेशी मूल की महिला को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए अपने पूर्ण मुंडन की धमकी दे डाली, तो उधर एक विश्व विजेता खिलाड़ी ने अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए अपना पूर्ण मुंडन करा ही डाला। इसी तरह तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर को बाल चढ़ाए जाते हैं। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर इन बालों की कीमत से कुबेर का कर्ज उतारते हैं। कुबेर सृष्टि के सबसे धनवान देवता हैं। इसका मतलब है कि फिर कर्ज की रकम भी बहुत भारी भरकम रही होगी। तो क्या फिर भगवान वेंकटेश्वर भक्तों से सोना चांदी नहीं मांग सकते, सिर्फ बाल ही क्यों मांगते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि बाल सृष्टि की सबसे कीमती वस्तु है। वे जानते हैं कि बालों के अंदर आदमी का सारा बायोडेटा छिपा होता है। आप गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों से पूछकर देख सकते हैं कि डाटा की कीमत क्या होती है, थारे को जवाब मिल जावेगा। इतना इम्पोर्टेंट मैटर होने के बाद भी बालों की अचिंत्य शक्ति पर सही ढंग से वैज्ञानिक शोध हुए ही कहां हैं अभी तक। मुझे तो लगता है कि आज तक की सबसे कम समझी गई और सबसे जरूरी चीज बाल ही है। तो दोस्तों, बात यहीं पर जाकर अटकती है कि दाढ़ी मूंछ के मामले में लापरवाही बरतना अच्छी बात नहीं है। कुंडलिनी से भी तो आदमी का इसी तरह का गहरा लगाव होता है। हो न हो, पूरा का पूरा कुंडलिनी रहस्य बालों में ही छुपा हो, तभी तो केशों को पवित्र तीर्थ स्थानों पर बहाने का रिवाज है। एक बार मैं दुश्मन इलाके में बैठे नाई से बाल साफ करवाने चला गया। समझ लो, यह मेरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट था। मैं एक देसी वैज्ञानिक जो ठहरा, यह अलग बात है कि मेरी इन शुद्ध देसी खोजबीनों पर कोई ध्यान नहीं देता। फिर क्या था, उसके बाद वहां के लोग मेरे अजीज और मैं उनका अजीज। बालों की चमत्कारिक शक्ति को देखकर मैं दंग रह गया। बालों के रहस्यमयी टोटकों पर अभी ढंग से रिसर्च नहीं हुई है भाई साहब। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि बालों में ही सभी समस्याओं का हल मिल जाए। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि बड़े पहुँचे हुए वैज्ञानिक हुआ करते थे, न हींग लगाते थे। न फिटकरी और रिसर्च इतनी गहरी जिसे छूने तक की हिम्मत आज की बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं न कर सके है। तांत्रिक टोटकों को ही देख लो, कैसे पहुंचे हुए तांत्रिक आदमी के सिर्फ एक बाल से पूरे आदमी को वश में कर लेते हैं। महिलाएं ऐसे केश तंत्र का ज्यादा शिकार बनती हैं, क्योंकि उन्हें ही अपने केश सबसे प्रिय होते हैं। बालों के इस छोटे से टोटके के आगे सारा आधुनिक विज्ञान फेल। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। आदमी का त्वरित रूपांतरण जैसे कुंडलिनी जागरण से होता है, वैसे ही मूंछ काटने से भी होता है। इसीलिए पुराने जमाने में लोग अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए अपनी मूंछ काट दिया करते थे, तभी से अपनी मूंछ बचाने की कहावतें बनी। उदाहरण के लिए मूंछ ऊंची रखना, मूंछ न कटने देना, मूंछ का सवाल होना, मूंछ को शर्मिंदा न करना, मूंछ की लाज रखना, मूंछ की शर्म करना आदि बहुत सी। सच भी है, सोने के जेवर की तरह अच्छी तरह से संभाल कर रखी हुई मूंछ बुरे वक्त पे काम आती है। मुझे भी एक बार प्यार संभाल कर रखी हुई मूंछों ने ही बचाया था। हुआ ये था कि मैं अपने बीते हुए जीवन से पूरी तरह उदास और निराश हो गया था। फिर किसी दैव कृपा से मिले एक गुरु सदृश तजुर्बेदार व्यक्ति ने मुझे मूंछ साफ करने की सलाह दी थी। वे खुद भी अपने नित नए नवेले चेहरे के शौकीन थे। दरअसल वे मेरे कॉलेज टाइम के रंगीन मिजाज के प्रोफेसर ही थे। कॉलेज की लड़कियां तो उनसे बड़ा लगाव रखती थीं। एक बार तो लगाव इस हद तक बढ़ गया था कि कुछ एक छात्राओं को अपने साथ छेड़छाड़ की आशंका पैदा हो गई थी। भगवान जाने क्या क्या मामले रहे होंगे। खैर, वे मूंछों की वजह से मेरे ऊपर ढाए गए सितम से अच्छी तरह वाकिफ थे। आपको तो पता ही है कि कॉलेज लाइफ में चिकने चेहरों की ही तूती बोलती है। मूंछों वालों को तो वहां पर बाबा बोला जाता है। बाबा भी अगर असली समझे तब तो बात भी बने ना। अब तो बाबा का मतलब भंगी, पगला, इश्क विश्क में हारा हुआ और पता नहीं क्या। दो घिन आती है सोचकर भी। और तो और, जितना भी आप अकल का घोड़ा दौड़ा सकते हो नकारात्मक लफ्जों के मैदान में दौड़ा लो, सबका पर्यायवाची बाबा ही दिखेगा आपको। लापरवाह तो बाबा, भांग पिए तो बाबा, शराब पिए तो बाबा, हद चबाए तो बाबा, लुगाई संग घूमन लागे तो बाबा, मार कुटाई करे तो बाबा। बस दो समझदारों को इशारा ही काफी होता है। असली बाबा को बाबा कहोगे तो चिमटा पड़ेगा। बाबा क्या दहेज में मिला शब्द है, जिस मर्जी के साथ मन किया चिपका दिया। असली बाबाओं में एकता ही कहां, जो कोर्ट में पेटिशन दायर कर सके। कहते हैं ना कि शेर अकेला चलता है, झुंड में तो भेड़ बकरियां चला करती हैं। इधर असली जाति वर्ग को असली नाम से नहीं बुला सकते, और उधर जहां देखो बाबा बाबा बाबा, तौबा के लिए न बाबा ना। बच्चियां नू पुचकारन लाई, ओ मेरा बाबा, एह ता माड़ा जिहा जचदा वी है, किवे की बाबा ते बच्चे दोए ही सौखे हुंदे हन। और अब तो नया ही ट्रेंड चल पड़ा है, माय क्यूटी बाबा। बाबा की मशहूरी का आलम ये कि एक बार मेरी पत्नी देवी ने मुझे प्यार से बाबा क्या कह दिया, मेरा छोटा सा बेटा हंसता ही जाए हंसता ही जाए। मैंने पूछा, मेरे बाबा इतना क्यों हंस रहे हो, तो वह मेरी तरफ अंगुली करके हंसते हुए बोला, बाबा ब्लैक शीप। आजकल के बच्चे भी न कितने समझदार हो गए हैं। बाबा बर्गर यूनिवर्सल बोल नी देखिया अड़यो। कभी उस्ताद पहुंचे हुए हुनरमंद को कहते थे, आज भंगी ट्रक ड्राइवर को बोलते हैं। एक बार मैंने एक देसी इंजीनियर को तारीफ में उस्ताद क्या बोल दिया, उसने अगले ही दिन मुझे मानहानि का नोटिस भिजवा दिया। हाय राम, ये शब्द हैं के देसी तोप के गोले। गुरु शब्द बड़ा पवित्र अल्फाज माना जाता है, पर एक हिजड़े के निर्माण के दौरान भी इसका बहुत प्रयोग होता है। वहाँ पर कामदेव के शहर को उजाड़ने वाले एक्सपर्ट शख्स को भी गुरु बोला जाता है। कोई गलत काम करके आए तो सबसे पहले इन्हीं शब्दों से स्वागत होता है, वाह गुरु। अब समय आ गया है कि हम पवित्र शब्दों की मर्यादा को बचाएं। अगर देशद्रोही की नापाक मूंछों को बचाने के लिए आधी रात में कोर्ट खुलवाए जा सकते हैं, तो इन शब्दों को बचाने के लिए क्यों नहीं? जबकि ये शब्द तो सबसे बड़े देशप्रेमी हैं, क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा करते हैं। मैंने तो अपने समझदार मित्रों से साफ दो शब्दों में कहलवा दिया है कि या तो वे मेरे आध्यात्मिक लेख न पढ़ें, या फिर मुझे सपने में भी गुरु और बाबा न बोलें। एक चालू सा दोस्त मुझे बार दो शरीफ कहकर चिढ़ाता था। मैंने उसे खरी दो सुनाते हुए चेता दिया कि भले ही वह पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ को शरीफ बोलाए, पर मुझे कभी शरीफ न बोले। उसके बाद वो मुझे नैस बोले तो अंग्रेजी का अच्छा बोलने लगा। हाँ, तो मैं क्या मूल प्रवचन दे रहा था कि अब वे हरफन मौला महोदय अपने योग्य शिष्य को कैसे न पहचानते। सो उन बिन बुलाए गुरु ने पहली ही मुलाकात में मुझे प्रेम, गर्व, मुस्कान और गर्मजोशी के साथ सबसे प्रिय या सच्चा शिष्य कुछ ऐसा कहकर संबोधित कर दिया। वो मेरी मूंछों का काला झाड़ देखकर कुछ औंच जैसे भी गए थे, पर ये तो घुल मिल कर उन्हें बाद में पता चला था कि मेरे दिल पर तो मूंछें थी ही नहीं। बाद में कभी बता रहे थे कि तू डेंजरस हुआ करता था। मैंने भी स्पष्टीकरण दे दिया था कि वो मेरी मूंछें डेंजरस थीं, मैं नहीं। झाड़ साफ दिमाग तो थे ही, इसलिए एकदम से समझ गए, फिर जाके ढंग से घुल मिल पाए, नहीं तो मुच्छड़ों और मुच्छकटों की प्रॉपर हुकिंग कहाँ कहाँ दो की सुनाऊं। इन वफादार मूंछों ने कहाँ दो नहीं बचाया है मुझे। अब तो लगता है कि कुत्ते उनके घने बालों के कारण ही वफादार होते हैं। एक दो मुच्छकटे और एक माइनस दो मुच्छर लोग भी उनके अगल बगल में उनसे कुछ इधर उधर की हांकते कामकाजी चहलकदमी कर रहे थे। अपने प्रति उनके अंदर इतने सारे सुंदर और मजबूत भाव, वो भी एक साथ देखकर तो मैं दंग ही रह गया। साथ में मैं अपने को खुशकिस्मत भी समझने लगा कि उन्होंने मुझे मुच्छर शिष्य नहीं कहा। वो भाव प्राकट्य उन्होंने इतनी तेजी से किया कि जब तक उनके एकदम चिकने चेहरे से मेरी नजर हटती और मैं उनसे कुछ कह पाता, तब तक वे वहां से रुखसत भी कर गए थे। उस समय तो मुझे लगा था कि शायद जोक कर रहे होंगे, पर अब समझ आ रहा है कि वह जोक नहीं, उनका सच्चा मुच्छकता आशीर्वाद था। वे खुद मुच्छड़ों और मुच्छकटों के अघोषित गठबंधन के सताए हुए लगते थे। बाद में तो मुझे उनसे ये गंभीर शिकायत भी सुनने को मिली कि उन्हीं के शिष्यगण उन्हें अपने चेहरे का बंजर मैदान दिखाकर चिढ़ाया करते थे। शायद इसी वजह से कई बार अपनी मुच्छों को टेबल पर सजा देते थे। हो सकता है कि वे कॉलेज टाइम की मेरी तांत्रिक गुरु भक्ति की निष्ठा को संयोगवश ताड़ गए हों। उनको भोले शंकर और कामदेव का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त लगता था। उस समय उनकी जिंदगी का चिकना और फैशनेबल चेहरा रखने का दौर चल रहा था, इसलिए मूंछ छेदन संस्कार की दीक्षा उनसे लेना ही मैंने सबसे उचित समझा। उन गुरुदेव की सलाह पर मूंछ काटने से मेरा जबरदस्त रूपांतरण हुआ और उस नाजुक दौर में उन्होंने मुझे ऐसे संभाला जैसे एक कुंडलिनी गुरु अपने शिष्य को कुंडलिनी रूपांतरण के नाजुक दौर में संभालता है। मूंछ काट कर चिकना चेहरा बनने से मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी जिंदगी का रिफ्रेश बटन दबा हो, जैसे कि मूंछों के साथ बीती जिंदगी भी उतर गई हो और मैंने एक नया सा जन्म ले लिया हो। मुंडन साई सब कुछ गले उतर रही है। कुंभ में भी नागा साधु बनने आए लोगों के सिर और चेहरे का पूर्ण मुंडन करके ही उनका माइंड वॉश किया जाता है, ताकि वे पिछली जिंदगी में कभी वापस लौट ही न सके। यज्ञोपवीत संस्कार के समय भी तो ऐसा ही पूर्ण मुंडन किया जाता है, बालों की एक लंबी शिखा को छोड़कर उसके बाद भी आदमी का दूसरा जन्म माना जाता है, मतलब माइंड वॉश हो जाता है उसका। बालों की शिखा उसे कुंडलिनी से और घर से जोड़कर रखती है, इसीलिए तो वह घर नहीं छोड़ता, बस कुंडलिनी साधना में लगा रहता है। इसी तरह बौद्ध भिक्षु इनसे भी एक कदम आगे रहते हैं। वे हमेशा ही पूर्ण मुंडन करवाए रखते हैं, ताकि आम लोग उनके संपर्क में कभी आ ही न सके और आकर उनकी साधना में विघ्न न डाल सके। अब केश प्रेमी लोग कहाँ जाने लगे मुंडक सभाओं में। कुछ किस्म के मुसलमान भाई तो काफिरों से अलग दिखने के लिए अलग ही नायाब नुस्खा अपनाते हैं। वे मूंछों को तो साफ कर देते हैं, पर दाढ़ी को बड़ा पालते पोसते हैं, तो कुछ एक बकरे के जैसी दाढ़ी रखते हैं। रब खैर करे, कहीं पर लोग दाढ़ी पर चित्र विचित्र डिजाइन और नक्शे आदि बनवाते हैं। भाई उनके नेचुरल आर्ट को तो दाद देनी पड़ेगी। न रंग लगे, न कैनवास, बस एक बढ़िया सी कैची चाहिए। कुछ लोग चार्ली चैपलिन की तरह नाक के ठीक नीचे मधुमक्खी के जितनी मिनी मूंछ रखते हैं। इससे उन्हें नई ही उमंग का एहसास होता है। ऐसी मूंछ रखते हुए भी डर लगता है कि कहीं खुराफाती लोग मधुमक्खी को भगाने का झूठा बहाना बनाकर मुंह पर थप्पड़ ही न मारते रहे। कुछ लोग बहादुरी का प्रदर्शन करने के लिए दोनों तरफ को लंबी उठी हुई और पैनी मूंछे रखते हैं, जैसे कि जाबांज फाइटर पायलट अभिनंदन की। सुनने में तो ये भी आया कि उनकी मूंछों के डर से ही पाकिस्तान को उन्हें 24 घंटे के अंदर रिहा करना पड़ा था। कुछ लोग अपने आप को विशिष्ट जताने के लिए दाढ़ी मूंछ को मेहंदी या बनावटी रसायनों से लाल रंगवाते हैं, तो कुछ उन्हें कजजली काला कर देते हैं। बेचारे आम गरीब आदमी को ही मन महसूस कर झुंड की खाल के अंदर रहना पड़ता है, क्योंकि यदि वे विशेष बनने लगेंगे तो खाएंगे क्या। लोगों के इस मिजाज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राचीन काल में मूंछों का वास्तुशास्त्र जरूर रहा होगा। फिर हो सकता है कि वह मध्ययुग में जिहादियों द्वारा जला दिया गया हो। उसमें उन्हें अपनी अयाशी परस्त मूंछों की तौहीन नजर आए हो। भला एक अमन पसंद शख्स को अमन का बेइंतहा पैगाम देने वाली पाक साफ मूंछों की शान में गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त हो सकती थी। तौबा तौबा, प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि इस तरह की विकृत मूंछ विद्या से ही हिंदुओं के अनगिनत धार्मिक स्थल निस्तनाबूद किए गए हैं और असंख्य धार्मिक ग्रंथ सुपुर्दे खाक किए गए हैं। तो भाइयों, में अपनी मूंछ मुंडन से जुड़ी आपबीती बता रहा था कि कैसे उससे डिप्रेस करने वाली वर्तमान की कॉलेज की और बेरोजगारी की जिंदगी चली गई थी रिसाइकल बिन में, और बचपन के साथ स्कूल टाइम की जिंदगी आ गई थी रिसाइकल बिन के कचरे से निकलकर मेरे मस्तिष्क के डेस्कटॉप पर। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग की वही पुरानी विंडो अपडेटेड वर्शन के साथ रीइंस्टॉल हो गई हो। वही पुराने जीवन के ख्याल, पर अनोखे और हुस्न से भरे अंदाज में। दोस्तों, बहुत तरक्की की मैंने उस दौर में। मेरी तरक्की का बाहरी माहौल तो पहले से ही बना हुआ होगा, बस भीतरी माहौल डगमगा रहा था, जिसे मेरे चिकने चेहरे ने संभाल लिया। जब मेरी हालत स्थिर हो गई, तब मैंने फिर से चेहरे पे फसल उगाना शुरू कर दिया। बर्फबारी के दिनों में तभी तो अनाज मिलेगा ना, जब पहले से फसल इकट्ठी कर रखी हो। मित्रों, मूंछों के सभी रहस्यों से पर्दा उठाने लगूं तो एक पूरा मूंछ पुराण बन जाए। हाय, ये लेखन भी भला क्या अजीब बला है ना। हाथ थक जाते हैं पर मन नहीं थकता, और अगर तो मूंछ जैसा रोमांचक विषय हो तब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मन थक जाए। तजुर्बेदार बुजुर्ग लोग कहते हैं कि महिलाएं शादी से और पुरुष रण से वापस नहीं लौटते। इसी तरह मूंछ जैसे दिलछेड़ विषय के लेखक की लेखनी कभी कागज से वापस नहीं लौटती, इसलिए सब्र बनाकर पढ़ते रहना, ताकि लेख के अंत में आप भी अपने को मूंछ विशेषज्ञ बना हुआ पाओ। दरअसल मूंछों को हटाने से मेरी बरसों पुरानी दबी पड़ी कुंडलिनी ऐसे चमकने लगी थी जैसे झाड़ को हटाकर उसके अंदर दबी पड़ी सोने की अंगूठी चमकती है। ये भी एक शोध का विषय है कि क्या मूंछों का अंधेरा चमकदार कुंडलिनी को ढक कर रखता है। मूंछे साफ करने का सबसे बड़ा फायदा मुझे यही हुआ कि मैं अपनी कुंडलिनी को अच्छी तरह से पहचान पाया था। फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो मुझे जहाँ लेके जाती रही मैं वहाँ हो आता रहा, और वह हर प्रकार से मेरा भला ही करती रही। कुंडलिनी के आगे जैसे मैं बच्चे की तरह नंगा ही हो गया था। मूंछे उड़ाने और नंगे होने के बीच में कोई ज्यादा अंतर है भी नहीं। मैंने उसके आगे अपने आप को समर्पित कर दिया था। कुंडलिनी के सहयोग से कड़ी मेहनत करके मैंने कामयाबी के बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए। दोस्तों, कुंडलिनी स्त्रीलिंग में थी, तभी तो कुंडलिनी को एक स्त्री की तरह संबोधित किया जाता है। ये जो प्यार व्यार और शादी ब्याह का खेल भौतिक जगत में चलता रहता है ना, बिल्कुल ऐसा ही मन के सूक्ष्म जगत में भी चलता रहता है। फिर क्या था, उस स्त्रीलिंग कुंडलिनी को देखकर पुलिंग गुरु भी पहुंच गए मूंछ मुस्कुराहट बिखेरते हुए गाजे बाजे के साथ। दोनों ने शादी की, रोमांस किया, बच्चे पैदा किए और फिर दोनों बुढ़े होकर एक दूसरे के प्रति उदासीन जैसे भी हो गए। वो मेरे सूक्ष्म माँ बाप मुझे छोड़कर जा रहे थे, मैं कुछ उदास रहने लग गया था। तभी मैंने कुंडलिनी योग का अभ्यास शुरू किया और उन मुच्छर गुरु बाद की कुंडलिनी की मूंछ खींचकर उन्हें फिर से जगा दिया। बोले तो एकदम मस्त कुंडलिनी जागरण। तब जाकर मैंने कुछ राहत की सांस ली और घर की खेती को फिर से उगाना शुरू कर दिया। पर आज भी मैं बड़े झाड़ से डरता हूँ। पुराना सदमा जो गया नहीं मेरे दिमाग से पूरी तरह, पता नहीं क्यों अंधेरा जैसा लगता है इसके नीचे। क्या सबको लगता होगा या मेरे को ही, इसकी सफाई से क्या सबकी कुंडलिनी चमकती होगी या सिर्फ मेरी ही चमकी थी? ये सब साझे शोध और अनुभव से ही पता चल सकता है, इसलिए मैं इनकी इस तरह से छटाई करता रहता हूँ ताकि इनकी जड़ तक हवा और रोशनी जाती रहे। पर मुझे लगता है कि यह मन का वहम भी है। कुंडलिनी जागरण के समय तो मेरे पूरे चेहरे पर झाड़ पसरा हुआ था, हालांकि वह मध्यम आकार का था, पर था तो घना झाड़ ही। उस समय तो हर जगह प्रकाश ही प्रकाश था। इससे जाहिर होता है कि सब कुछ देश, काल और मानसिकता पर निर्भर करता है, इसलिए जैसा अच्छा लगे वैसा करना चाहिए। पर कुंडलिनी के लिए प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। यदि घास फूस की तरह हल्की कुंडलिनी को यह मूंछों का झाड़ दबा कर रखता है, तो फिंदार कोबरा नागिन की तरह फुफकारे मारने वाली शक्तिशाली कुंडलिनी को दुनिया की नजरों से बचाते हुए संभालकर भी यही रखता है। इसीलिए तो मैंने कहा न कि वक्त की भाषा पढ़नी आनी चाहिए और सर्वहितकारी मूंछों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। वक्त के अनुसार आदमी खुद चलता नहीं और दोष मरता है मूंछों के सिर। सबसे ज्यादा दुरुपयोग आदमी ने मूंछों का खुद ही किया है। मूंछों की शक्ति से पता नहीं कितने अनैतिक काम किए हैं उसने। मूंछों की अथाह शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ इनके ऊपर प्यार भरा हाथ फेरने से ही जोश कई गुना बढ़ जाता है। ए लो जी, इस क्रिया के लिए मूंछ विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त नाम भी याद आ ही गया। मूंछ पर ताव देना बड़ा गूढ़ नाम है। ये आप सोच भी नहीं सकते कि ताव का अर्थ यहाँ ताप या गर्मी है। जैसे मालिश की गर्मी से सरोबार पहलवान अंगड़ाए लेते हुए उठ खड़ा होता है, ऐसे ही मूंछे भी। उपरोक्त कुछ मुख्य वजहों से मूंछों की इज्जत आज इस कदर गिर गई है कि लड़की वाले सबसे पहले यही पूछते हैं कि कहीं लड़का मूंछों वाला तो नहीं है। कभी मूंछ वाले का समाज में विशिष्ट रुतबा हुआ करता था, आज तो आलम ये है कि मूंछों को ये लोरी गीत सुनाकर शांत करना पड़ता है। मत रो टिल्डा मेरी मूंछ, चुप हो जा, नहीं तेरी पूछ। जो कुकाल में होता है, बुरे हाल में होता है, ए यार मेरे साथ तेरे वही तो हुआ, मत रो, टिल्डा 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 टिल्डा। दोस्तों, ये ट्रेंड बदलना चाहिए और हमें बेकसूर को बचाने के लिए मिलकर आगे आना चाहिए। और आगे की कहें तो डाकुओं का भी मूंछों की बदनामी में भारी हाथ रहा है। हमारे समाज के लेखकों और कवियों ने भी मूंछों को डाकुओं के साथ बहुत जोड़ा है। ये कहीं पढ़ने में नहीं आता कि बड़ी बड़ी मूंछों वाला विद्वान। और तो और, देवियां भी पीछे नहीं रही हैं। उनका भी बच्चों को सुलाने के लिए बड़ी दो आंखों के साथ डरावनी मुद्रा में अक्सर यही डायलॉग होता है, बड़ी माइनस दो मूंछों वाला ला ला ला। अब इससे ज्यादा क्या कहूँ। पति की कगार पर खड़ी मूंछों को बचाने के लिए उनकी खोई इज्जत वापस लौटाना जरूरी है कि नहीं? यदि जरूरी है तो मूंछ संरक्षण के लिए भी कानून बनने चाहिए। आज की इस विकट परिस्थिति में मूंछ आरक्षण के लिए कानून का बनाया जाना बहुत जरूरी हो गया है। मुच्छड़ों को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दे देना चाहिए। मूंछ संरक्षण के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जानी चाहिए। मूंछ भत्ते का विशेष प्रावधान होना चाहिए। अपनी कहूँ तो मेरे चेहरे पर घनी दाढ़ी आती ही नहीं, इससे इसकी जड़ों में हवा व रोशनी खुद ही लगातार पहुँचती रहती है। हो सकता है कि मेरी सदाबहार कुंडलिनी के पीछे इसी अधमुंडी किस्म की मूंछों का हाथ हो। इसको लेकर मेरी घरवाली बोलती रहती है कि आप दाढ़ी के साथ लड़की जैसे लगते हो। इसलिए कई बार मेरे मन में आता है कि क्यों न इस नपुंसकता की निशानी को जड़ से ही उखाड़ फेंकूं। पर तभी यह भी सोचता हूं कि अगर भरी बरसात के बीच खेत को बंजर रहने दिया तो जालम गर्मी के दिनों में क्या खाएंगे? अगर सर्दियों में ही सारे कपड़े उतार दिए तो गर्मियों में क्या उतारेंगे? दोस्तों, मैंने ये भी महसूस किया कि खाली मूंछ की बजाय दाढ़ी मूंछ का मिश्रण ज्यादा दार्शनिक होता है। कहते हैं न कि चेहरा मन का आईना होता है। आईने के अंदर सुंदर बनने से उसके सामने खड़ा आदमी खुद ही सुंदर बन जाता है। इसलिए चेहरे पर अद्वैत दर्शन बनाकर रखने से मन में खुद ही अद्वैत छा जाता है। मुख्य भूभाग को बंजर रखना और पहाड़ी की तलहटी में बनी छोटी सी पथरीली क्यारी में झाड़ उगा कर रखना समझदारी का काम भी तो नहीं लगता। तो इस समस्या को देखते हुए मैंने पूरे भूभाग में बिजाई शुरू कर दी थी, पर फिर एक नई समस्या आन पड़ी थी। फसल के एकमुश्त कटान के बाद पूरा भूभाग बंजर और नंगा लगता था। कोई सीधा आसमान से जमीन पर आ गिरे और खजूर भी न मिले अटकने को, तो उसकी व्यथा पीड़ा आप खुद भी समझ सकते हैं। साथ में द्वैत या यूं कह लो कि बदलाव के झटके ऐसे लगे जैसे सर्द गर्म के लगते हैं। और भाई, ये मनहूस द्वैत तो मन का सबसे बड़ा रोग है ना? तो दोस्तों, दोनों समस्याओं से बचने का एक ही मध्यमार्ग वाला तरीका बचा था। क्यारी की फसल को जमीन से न काटकर थोड़ा ऊपर -2 से काटा जाए। इससे क्या हुआ कि फसल कटान के बाद भी थोड़ी बहुत हरियाली बची रही। उससे लोगों की आंखों का नूर भी बरबस बना रहा और द्वैत या बदलाव पर भी काफी रोक लग गई। यहाँ एक दार्शनिक पेंच और है। दरअसल अद्वैत का निर्माण द्वैत से ही होता है। इसलिए जो 100% का दार्शनिक मिस्त्री है, उसके लिए तो द्वैत पैदा करने वाली विकराल मूंछें किसी सोने की ईंट उगलने वाली खदान से कम नहीं है। वह तो उनकी चिनाई करने से पहले उनके साथ मन के काम, क्रोध जैसे दोषों का मिक्सचर सीमेंट मोटा की तरह चिपकाता है, फिर उनसे अव्वल दर्जे के अद्वैत महल तैयार कर लेता है। उसकी बसाए अद्वैत नगरी के आगे कुबेर की अलकापुरी क्या मायने रखती है? हो न हो, अलकापुरी इन्हीं मूंछ महलों को कहा गया हो। वैसे भी कुबेर की मूंछें भी बड़ी सुंदर बताई जाती हैं। मैंने भी एक बार इसी तरह त्रिलोक लुभावन अद्वैत नगरी का निर्माण किया था। उस समय मेरे पास बड़े दो मिस्त्री ज्ञान प्राप्ति के लिए दूर -2 से घुटनों के बल आते थे। इसी केश प्रेम की विचित्र मानसिकता के कारण ही आदमी अपने जैसे बालों वाले आदमी के साथ ही घुलना मिलना पसंद करता है। इसी विकृत मानसिकता के परिणाम स्वरूप ही तो तालिबानियों ने पूरे अफगानिस्तान में सभी को दाढ़ी रखने का फरमान जारी किया था, पर स्त्री उसे कम से कम बालों वाली चाहिए। खुद वह बेशक कितने ही लंबे बाल क्यों न रखता हो, पर स्त्री के मामले में उसका यौन स्वार्थ जो जुड़ा होता है वह उसके केश स्वार्थ पर भारी पड़ जाता है। इसी तरह अपने बच्चे कैसे ही बालों वाले क्यों न हो, सभी अच्छे लगते हैं, इसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से यौन स्वार्थ ही जुड़ा होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि केश भाव और यौन भाव ये दोनों सबसे शक्तिशाली भाव हैं। तांत्रिक इन दोनों का महत्व अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए दोनों को संभाल कर रखते हैं। अब कुछ समझ में आ रहा है कि भगवान शिव के जैसे महान तांत्रिक जटाधारी और मस्तमौला क्यों होते हैं। कई बार तो मुझे लगता है कि यदि कुंडलिनी जागरण के समय मेरी दाढ़ी न बढ़ी होती तो मुझे कुंडलिनी जागरण ही न होता। क्लीन शेव होने से मैं अपना चिकना चुपड़ा मुंह लेकर उन गाने बजाने वाली औरतों के इर्द गिर्द इस प्रकार मंडराता ही रहता, जिस प्रकार एक बार नारद मुनि अपना बंदर का मुख लेकर पूरी स्वयंवर सभा में सबकी आंखों से आंखें मिलाते हुए मंडराते फिरे थे। उससे मुझे उस दोस्त से मिलने का मौका ही न मिलता जिससे मैं कुंडलिनी की याद में खो गया था। साथ में अगर अपने जैसे नामर्द चिकनू को देखकर कोई औरत इशारे में भी दिल में चुभने वाला ताना कस देती तब तो जागरण का प्रश्न ही पैदा न होता। ताने से तिलमिलाए नारद ने भी तो कपटी कहकर भगवान विष्णु की खटिया खड़ी नहीं कर दी थी वैकुंठ में जाके, जागरण गया गेहूं बीजने जा बांदर भगाने। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि उस उलाहने से कुंडलिनी में खोने की बजाय मेरा दिल उलाहने में खोने लगता। स्त्री की नाराजगी और स्त्री के उलाहने से भयानक चीज इस दुनिया में कुछ नहीं है यारो। आदमी सब कुछ भूल सकता है, पर एक औरत का उलाहने से भरा नाराज चेहरा कभी नहीं भूल सकता। अगर औरत की नाराजगी से घायल दिल आदमी कुंडलिनी जागरण क्या भगवान को भी पाले तो भी भगवान उसे उस नाराज औरत के चरणों में पड़कर माफी मांगने के लिए भेजते हैं। तभी अपने अनदेखे महल का अनदेखा मेन गेट उसके लिए खोलते हैं, वरना आदमी को उस अनदेखे महल को बाहर बाहर से ही देखकर संतोष करना पड़ता है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि औरत मान ही जाएगी, यह उस पर और आपके मन की पवित्रता पर निर्भर करता है। कई बार औरत माफी मांगने आए मर्द को कोई दूसरा ही उलाहना मार देती है, इससे वह कहीं का नहीं रहता, एक धोबी के कुत्ते की तरह न घर का न घाट का। वह फिर से वापस मुड़कर अनदेखे भगवान को दूर खड़े देखकर उसके पास पहुंच जाता है। भगवान उसे थोड़ा सा पुचकारते हैं और फिर औरत के चिकने चेहरे को शांत करने के लिए वापस रवाना कर देते हैं। कई बार तो बेचारा मर्द स्त्री और भगवान के बीच में गेंद ही बनकर रह जाता है। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कोई अन्य दयालु और भाव से भरी स्त्री उस अभागे मर्द को थाम नहीं लेती। ये जो कहते हैं न कि लोहा ही लोहे को काटता है, दरअसल उस स्त्री को भगवान ही भेजता है अपनी दिव्य शक्ति से प्रेरित करके। इसलिए मेरी सलाह मानो, भगवान की कुछ मदद करने के लिए एक अच्छी औरत को भी ढूंढते रहा करो। स्त्री के मामले में डायरेक्ट एक्शन तो भगवान भी नहीं ले सकता, वह भी मामले का निपटारा एक स्त्री को भेज के ही कर सकता है। भगवान भी बेचारा सच्चा है, एक औरत के आगे उसकी भी नहीं चलती। अपनी पत्नी के डर से ही तो वह अपनी सभी मूर्तियों और चित्रों से मूंछें गायब कर देता है, नहीं तो उसके जैसा समदर्शी महानुभाव मुच्छड़ों के साथ क्यों पक्षपात करता। औरत के नाराज चिकने चेहरे की ज्वाला उसके अनछुए महल तक को छूने लगती है। वो करे भी तो क्या करे, यदि वह औरत के साथ सख्ती करे तो उसके बगल में बैठी उसकी पत्नी देवी उलाहना मारते हुए नाराज होकर चली जाए, वो भला अपने भक्त को चिकने चेहरे की ज्वाला से बचाने के लिए खुद क्यों उसका शिकार बने। मुझे तो चिकने लोगों पर यह सोचकर तरस आ रहा है कि कहीं वे स्त्री के कोप से बचने के लिए ही तो चिकने नहीं होते, औरत को उनका चिकना चेहरा देखकर उन पर तरस आ जाता होगा। चिकने चेहरे से औरत को बच्चे की याद जो आती है। वैसे भी औरतें बच्चों पर सबसे ज्यादा मेहरबान होती हैं, पर ये चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलती। गलती से अगर चेहरे पर दो बाल भी उगाए तो वह पिछली सारी कसर सूद समेत निकालती है। इसलिए पुरजोर आवाज से कहता हूँ कि औरत के जैसा चिकना चुपड़ा चेहरा बनाने से पहले औरत के द्वारा निभाई जाने योग्य जिम्मेदारियां भी समझ लेनी चाहिए। अगर ऐसा न किया गया तो बेचारे अमन पसंद दाढ़ीदार आदमी की आत्मा नाराज चिकने चेहरों के बीच ही भटकती रहेगी और उसे मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। कांटे तो मुरझाए हुए ही अच्छे लगते हैं, पर फूल तो हमेशा खिले हुए ही अच्छे लगते हैं। खिला हुआ फूल चेहरे पे न सही, दिल पर ही सही। इसलिए कहता हूँ कि सिर्फ मुंह पर ही नहीं, दिल पर भी कुंडलिनी रूपी दाढ़ी उगी होनी चाहिए। इससे जब औरत का प्यार कामदेव के पुष्पबाण पर सवार होकर दिल तक पहुँचेगा तो वह सीधा कुंडलिनी को लगेगा, जिससे कुंडलिनी गलती से जागृत भी हो सकती है। नहीं तो ऐसा होगा जैसा एक बार अंतर्राष्ट्रीय मूंछ प्रतिस्पर्धा में हुआ था। उसमें विजेता घोषित किए गए दिग्गज मूंछ शिरोमणि या बेचारे मुच्छर महाशय कह लो, सहज उद्गार प्रकट करते हुए कहने लगे थे कि उन्हें विजेता घोषित होते हुए ऐसा मजा आ रहा था जैसा एक गैंडे को बार दो कीचड़ में लौटते हुए आता है। जो इस मूंछ स्तोत्र को श्रद्धा पूर्वक पढ़ेगा उस पर जीवन भर मूंछों की अपार कृपा बनी रहेगी तथा इस जीवन के बाद उसे मूंछलोक की प्राप्ति होगी। अब कृपा करके इस दिव्य मूंछ संहिता को कहीं कॉपी पेस्ट न करिएगा, नहीं तो किन्हीं ताव प्र चोदित मूंछों की गास कहीं व्यंग्यकार पर ही न गिर जाए।